शांति। आज का रात्रि क्लास है 13/12/1964। उनको बहुत बहुत अनुभव मिलता है, जानते हो कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, कैसे समझाना होता है। ऐसे ऐसे प्रदर्शनी में कोई उन्नति जास्ती है या नहीं, क्या समझते हो? कुछ उन्नति है? उन्नति हो सकती है, बहुतों को कान में पड़ सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां कौन है? तो बहुत ही आकर के देख सकते हैं, उनकी बुद्धि में बैठेगा कि यहां फलानी प्रदर्शनी हुई थी। आगे चल करके जितनी जितनी वृद्धि होगी सर्विस की और प्रभाव निकलेगा, फिर बच्चे याद करेंगे और मजा होता जाएगा। बहुत सर्विस मिलती है ना, तो जैसे कि बहुतों को दान दिया जाता है, फिर सभी दान लेने वाले एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, कोई कैसा कोई कैसा। अब जबकि ये हो गया तो ड्रामा में तो जरूर था, जरूर समझना चाहिए कि इनसे ये जो तरीका निकला है ये अच्छा तरीका है, तो आगे चल करके और भी कोई तरीका निकल पड़े। कौन से तरीके की बात की? और प्रदर्शनी की बात की कि अभी ये जड़चित्रों की प्रदर्शनी का तरीका निकला है, हो सकता है आगे चल करके और ही कोई पावरफुल प्रभावशाली तरीका निकल पड़े, ये तो मालूम नहीं था। आगे के ऐसे प्रदर्शनी करेंगे, लेकिन हुआ फिर समझा देना चाहिए कि कल पहले भी ऐसे हुआ था और इनसे फिर वृद्धि भी होगी, क्योंकि अच्छा लगता है, भासता है कि इनसे मनुष्य को बहुत चित्रों के साथ भिन्न भिन्न समझानी अच्छी मिलेगी। जो इन चित्रों पर समझाते आते रहे हैं, जितने जितने चास्ती चित्र और नाले सहित होंगे तो मनुष्यों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। फिर प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, इसमें बच्चों की बहुत प्रैक्टिस होती है। इस बात की समझाने की बहुतों से बात करनी होती है, अनेक प्रकार के आते हैं, फिर धीरे धीरे जब कोई और सुनेंगे यहां ये देखा ये समझा रहे थे, तो कोई को टच भी हो सकता है, अरे कलप पहले वाले ही निकल पड़े, तो वो भी निकल सकते हैं। बाबा तो जोर करके लिखते भी हैं, जो भी मठ पंथ वाले साधु हो, चाहे जो भी हो, सबको निमंत्रण दो कि आकर के देखो, कुछ समझो। और निमंत्रण देते वक्त भी समझाना पड़े, दिखलाना पड़े कि वहाँ ये समझानी मिलती है। वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह ये बातें वहाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ तो चित्र है, समझानी है, परंतु श्रीमत पर ये सभी समझानी मिलती है। क्योंकि राजयोग की मत है, ये सन्यासी विद्वान नहीं समझा सकेंगी, क्योंकि बहुत विद्वान अक्सर करके सन्यासी ही है। समझते हैं ईश्वर के सुख काग विष्टा समान है। अरे ये तो राजयोग है, जो राजयोग भगवान ने सिखाया था, नर अर्जुन को नारायण बनने के लिए सिखाया था। और नारायण तो देवता होता है, भगवान की जो दात है उसे काग विष्टा समान कैसे कहा जा सकता है? तो ये सभी बातें समझानी पड़ती हैं। जिनके पास फिर ले जाते हैं, ऐसे ऐसे ले जाने से वो इतना अटेंशन नहीं देंगे, हर एक से बात करनी होती है, बात करने का शौक होता है, जितनी बात करेंगे इतना अच्छा होगा, किसके कान में बात पड़ेगी, फिर आगे चल करके वो समझेंगे कि फलानी फलानी आई थी, फलानी ने हमको निमंत्रण दिया था, ये पढ़ा था। किस किस के पास चित्र वगैरह रह जाएंगे तो वो देखेंगे, जिनके भाग्य में होगा उनके पास कोने में भी रह जाएंगे, जब सुनेंगे तब समझेंगे कि हमको ये चित्र मिले तो थे, अच्छा फिर भी तो इन्हें देखें। और देखने से फिर वो खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जो भी सर्विस हो रही है वो तो होती है। कल पहले भी इस प्रकार से समझाया था जरूर, ये बम्बई जैसे बड़े गांव में 5-7 जगह ये प्रदर्शनी होनी चाहिए। इसमें खर्चा होगा तो कोई बात नहीं, बहुत करके हफ्ते के लिए 500-700 रुपया लेंगे तो और क्या हुआ, फिर बहुतों के कान पर पड़ेगा, बहुतों का कल्याण होगा, 10-20 का कल्याण हो जावे तो ढेर की ढेर प्रजा फिर बन जावेगी। 13/12/1964 की वाणी का दूसरा पेज, क्योंकि प्रजा भी तो जरूर चाहिए ना, तो प्रजा ऐसे बनेगी कैसे है? प्रदर्शनी के द्वारा प्रजा बनेगी, वारसदार नहीं बनेंगे, नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी? तो ये देखने में आया है, ये जो आइडिया निकाला है बॉम्बे वालों ने, किस बात का है? प्रदर्शनी के चित्रों का। ये आइडिया रमेश ने ही निकाला है। तो मूल ये है। किस बात में मूल है? प्रदर्शन करने की बात में मूल कौन है? रमेश है। पहले ख्याल में नहीं आया कि एग्जीबिशन किसको कहते हैं। कहते हैं कि एग्जीबिशन निकालेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, परंतु कुछ बात समझ में नहीं आती है ना। फिर जब रमेश ने ये बताया, ये दिखलाया, तब ये बात बुद्धि में आई। किसको है? ब्रह्मा बाबा को ये बात बुद्धि में आई। किस बात की? बात प्रदर्शनी की बात बुद्धि में आई। तो फिर उनको पुष्टि भी देनी पड़ी। और देखने में आया ये आइडिया बहुत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा रमेश के इस प्रदर्शनी के आइडिया से प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित हुए। जगदीश को भी पसंद आई होगी, क्योंकि दूसरी दफा गए हो ना, क्योंकि समथिंग न्यू है और ये आगे चल करके बहुत एप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बाप का ही तो परिचय देते हैं ना। काहे के द्वारा? प्रदर्शनी के द्वारा बाप का ही तो परिचय देते हैं ना। बाप का परिचय देने से प्रदर्शनी के द्वारा प्रजा तो निकलेगी, परंतु कौन से बाप की प्रजा निकलेगी है? ब्रह्मा बाप की प्रजा निकलेगी है? हम जो बाप का परिचय देते हैं, वो और कोई बाप का परिचय तो देते नहीं है। और कोई कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट धर्म पिताए हैं ना, उनका तो परिचय देते नहीं है। तो बाप की महिमा करते रहना, बाप का परिचय देना, इस बाप से भारत को कल्प कल्प स्वर्ग मिलता है। जो देते हैं उनको भूल गए हैं। क्या देते हैं? स्वर्ग देते हैं। कौन देते हैं? बाप देते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये धर्म पिताएं अपने अपने धर्म वालों को याद हैं, और हिंदुओं को अपने धर्म पिता का परिचय ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि हमारे धर्म का धर्म पिता कौन है, भूल गए हैं। भूलने के कारण ही जैसे कि गुमाए बैठे हैं। जब बाबा आकर के यह भूल बनाते हैं तो फिर से ले लेते हैं। ऐसी बहुत पॉइंट्स हैं जो उन लोगों को समझानी पड़ती है। रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है, कोई मनुष्य समझते थोड़े ही है। किसको कहा जाता है रावण राज्य, किसको कहा जाता है, हैं? अनेकों के राज्य को रावण राज्य कहा जाता है। रावण को कितने सिर है, अनेक सिर है। रावण को अनेक सिर है और विष्णु को एक सिर है। रामलीला में भी दिखाते हैं रावण को अनेक सिर और राम को एक सिर। क्या मतलब हुआ? अनेक सिरों से अनेक प्रकार की मत आती है। अनेक प्रकार की जो मतें आती हैं उसे कहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये बेकायदे राज्य हो गया। एक मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पकड़नी चाहिए। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते हैं। साधु संत सन्यासी कुछ भी नहीं समझते। जो पक्के सन्यास धर्म वाले साधु होंगे वो इतना नहीं समझेंगे। जितना उनमें जो कन्वर्ट हो गए होंगे हिंदू धर्म वाले वो समझेंगे। क्या हर धर्म में अपने धर्म के पक्के भी होते हैं? जो अपने ही धर्म में पक्के रहते हैं कोई में कन्वर्ट कभी भी होते ही नहीं। और ऐसे भी होते हैं जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को पकड़ लेते हैं। अपने धर्म के कच्चे होते हैं वो पकड़ेंगे, या जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो दूसरे धर्म को पकड़ेंगे? जो कच्चे होते हैं वो दूसरे धर्म को पकड़ लेते हैं। तो बाप के भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कच्चे हैं, तो दूसरों की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं और उन उन धर्म पिताओं के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आखिरी तो साधियों को भी समझना है। क्या कहा? और धर्म वाले फिर भी पहले समझ जाएंगे, लेकिन ये सन्यासी कब समझेंगे? आखिरी समझेंगे। पहले इनकी बुद्धि में नहीं आवेगा। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में वो साधु कौन है? जिनके मुखिया के लिए बोला है, क्या बोला है, है? बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ऐसे वो दुनियावी साधु अंत में निकलेंगे, वैसे ये बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के साधु भी अंत में निकलेंगे, जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो विजय होगी क्यों, ऐसी क्या खास बात है इनमें? हाँ, दुनिया में जितने धर्म हैं उन सब धर्मों के बीच में सन्यास धर्म धर्म वालों ने जितनी पवित्रता को तरजीह दी है उतनी और कोई धर्म वालों ने नहीं दी। और पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते। तो बताया कि आखिरी में ये साधु समझेंगे, बहुत फर्क है। वो लोग तो बोलते हैं ये कलयुग तो अभी हुआ है, ये कलयुग अभी कैसे खलास हो सकता है? उनकी समझ में अभी नहीं आवेगा, आखिरी इन समझ जावेंगे। देखो ये क्रिश्चियन लोग बहुत ले गए हैं ना, क्या ले गए हैं? क्या ले गए?
हीरे जवाहरात
ले गए, ज्ञान रत्न नहीं ले गए। हाँ, अंग्रेजों में एक बड़ा विद्वान हुआ है मैक्स मूलर, उसने भारत के ढेर सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। और बहुत कुछ शास्त्रों से उठाया। तो उसमें कोई को समझाया भी है और लिखा हुआ भी है कि विनाश होने का है। इन चित्रों में सामने देखते हो ना कि दो बिल्ले वर्ल्ड का विनाश करते हैं, तो ये जब देखेंगे तो वो एप्रिशिएट करेंगे कि ये इनके एवज में देखें और उनके ऊपर अटेंशन देवे, कंट्रास्ट करें। फिर देखो विलायत से कैसी उनकी चिट्ठियां भी आवेंगी। क्योंकि है सभी धर्म वालों के लिए क्या, सभी धर्म वालों के लिए क्या है ये जो चित्र है प्रदर्शनी के? खास चित्र कितने हैं? जो बाबा ने बनवाए हैं वो चार चित्र खास हैं। बाकी के लिए तो मुरली ने बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। अपना प्रभाव पुरस्कार करने के लिए, औरों को प्रभावित करने के लिए ढेर की ढेर प्रजा बनाने के लिए। सबसे जास्ती प्रजा कौन से धर्म में बनती है? क्रिश्चियन धर्म में। एक ही क्राइस्ट के दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में 200-250 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस दिखावे के आधार पर कितनों को अपनी प्रजा बना लेते। बाकी बाबा का कहना है कि ये चित्र तो सभी के लिए है, صرف ہندو دھرم والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو سبھی دھرم والوں کے لیے ہیں، کیونکہ سبھی دھرم والوں کو باپ کہتے ہیں کہ تم سب دھرم کے فالوورس آتماؤں کو میرے پاس آنا ہے. تو میرے ساتھ یوگ لگاؤ. یہ رائٹ بات ہے نا. میرے پاس آنا ہے، کب آنا ہے؟ سبھی دھرم والے باپ کے پاس کب پہنچیں گے؟ ہاں، ایسا کوئی بھی نہیں رہے گا جو باپ کو اپنے نزدیک نہ انبھو کرے، کیونکہ باپ وشو کا پتا ہے، وشو کلیانکاری ہے. اور سب دھرم پتائیں تو حد کے باپ ہیں، بل کرائسٹ 200-250 کروڑ کرسچنز کا باپ ہو، پرنتو پھر بھی اسے حد کہیں گے یا بے حد 500-700 کروڑ کہیں گے؟ تو سب دھرم والوں کو میرے پاس آنا ہے، اس لیے کہتے ہیں میرے سے یوگ لگاؤ. میرے سے یوگ لگاؤ منا کیا ہے؟ میرے سے یوگ لگاؤ منے من سے، من کے سنکلپوں سے، واچا سے، کرمندریوں کے کرموں سے، جو بھی کرم کریں وہ کس کے لیے کریں؟ باپ کے لیے کریں. تو کہیں گے کہ باپ کے نزدیک ہے. ہم بچے تو باپ کا پریچے دیتے ہیں، پریچے میں کون کون سی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ پریچے پتر ہوتا ہے نا، ارے آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے نا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مول نام ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، باپ کا نام ہوتا ہے، استھان کا نام ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے. تو ہم تو باپ کا پریچے دیتے ہیں، جو ایڈریس ہوتا ہے پریچے پتر میں وہ پرم نام کا ہوتا ہے یا اس سرشتی کا ہوتا ہے؟ اس سرشتی کے اندر کا پریچے چاہیے، پرنتو کوئی منشیہ کا پریچے تو ہم نہیں دیتے ہیں. کیا ہم تو بھگوان باپ کا پریچے دیتے ہیں؟ منا، بھگوان باپ میں اور منشیوں میں کیا انتر ہے؟ منشیوں کا من چنچل ہوتا ہے، منشیہ کہا جاتا ہے مننات منشیہ ہے، جو منن چنتن منتھن میں لگے رہتے ہیں، چاہے اچھا منن چنتن ہو چاہے برا ہو، منن چنتن میں ہی بدھی لگی رہتی ہے، ان کو منشیہ کہا جاتا ہے. جن کا من منن چنتن منتھن نہیں کر سکتا ہے وہ جانور کہے جاتے ہیں. और देवता देवताएं मनन चिंतन मंथन करते हैं या नहीं करते हैं? देवताएं तो एकाग्र बुद्धि है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। तो देवताओं को भी मनुष्य तो नहीं कहेंगे, वो तो देवता हुए। परंतु यहाँ तो न देवता की बात है, न मनुष्यों की बात है, न जानवरों की, किसकी बात है? भगवान बाप की बात है। तो हम ऐसे भगवान बाप का परिचय देते हैं जो सदा सर्वदा एकाग्र बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। हम मनुष्यों को बाप का परिचय देते हैं, और ये परिचय देना बहुत अच्छी बात है। बाकी समझाने वाले भी अच्छे चाहिए, इसमें नए नए का तो काम नहीं है। इसमें बाप का परिचय देने में जो नए नए ज्ञान में निकलते हैं, उनका काम नहीं है कि वो बाप का परिचय दे सके। आदमी आदमी देख करके किसको पकड़ा जाता है कि इनको तुम समझाओ, इनको तुम समझाओ। कोई कोई ब्रह्मा कुमारियां ऐसी भी होती है जो कोशिश करके खुद समझावेंगी, ये नहीं कहेंगी कि नहीं ये तो अच्छा आदमी देखते हैं, बड़ा आदमी है, समझने का चहक है, तो उनको दूसरा कोई दे देवे। ये हमेशा कायदा होता है कि जब कोई अच्छा आदमी देखा, विद्वान देखा कि ये तो बहुत शास्त्रों की बातें करते हैं, तो ठक से जो पढ़ा हुआ है उनको सामने देना चाहिए। ते अभिमान छोड़ना चाहिए कि हम क्यों समझावे या फलाना क्यों समझावे, फलाना क्या समझेंगे, शायद मैं नहीं समझती हूँ जो फलानी को कहती हूँ या कहता हूँ। ये भी देह अभिमान कोई कोई में आता है, और ये देहभान ब्रह्मा कुमारियों को बहुत रहता है। तेरे बारह 1964 की वाणी का तीसरा पेज, इनके मुआफिक कोई दूसरा होता तो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाता। जैसे धंधे में होता है ना, ग्राहक को बहुत युक्ति से उठाना पड़ता है, जिसको उठाने का शौक होता है वो सीख जाते हैं, देखते हैं कि ये मेरे से भी अच्छा है। सेठ को बुलाना चाहिए, तो सेठ को बुलाया कि सेठ जी आओ, इनसे आकर के बात करो, ये आदमी कुछ बड़ा देखने में आता है। तो फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, सेठ जी आया हुआ है, ये मालिक है, आप इनसे बात करो। ग्राहकी में भी ऐसे ही किया जाता है, यहां समझाने में भी ऐसे किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो कोई सेठ को कुछ न कुछ जास्ती तिलक दे देंगे, वो होशियार होते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखना है। जितनी बच्ची जास्ती होगी इतनी बहुत अच्छी सीखेगी इस प्रदर्शनी में। बाबा को तो मालूम रहता है कि किस किस को इस प्रदर्शनी में जाना चाहिए, उठाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सर्विस पर जो रहती है, और कोई तो सर्विस पर शौक नहीं रखते हैं, तो उनको भेज करके क्या करेंगे। बाकी बहुत अच्छा है, बच्चियां या जो भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि कौन कौन सर्विसेबल हैं। ऐसे नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कौन अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं। अच्छा, बाजा बजाओ। बाबा को बीच बीच में टोली अचानक क्यों याद आ जाती, बाजा क्यों याद आ जाता है? है? इसलिए याद आ जाता कि जो बच्चा बुद्धि होते हैं उनकी ठरक ही ऐसी होती है। अगर कोई पूछे कि मनुष्य सृष्टि कौन रचता है तो भी कहेंगे जरूर ना कि भगवान रचता है। क्या भगवान ही रचता है सृष्टि का? हर बाप रचयिता नहीं होता है, है? अरे सृष्टि का रचयिता कोई भी बाप इंडिविजुअल होता है या नहीं होता है? तो भगवान को ही रचयिता क्यों बताई दिया है? अरे बाल बच्चों का सृजन व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी जो बाप के रूप में होता है वो ही करता है। तो भगवान का ही नाम विशेष क्यों लिया कि भगवान ही सृष्टि का रचयिता है? हैं? वो तो तुम्हारी आत्मा, जो भी बाप होता है वो आत्मा स्वरूप में निराकार है और सृष्टि के पांच तत्वों के शरीर को धारण करता है, साकार शरीर को। वो भी तो निराकार साकार का मेल है, तभी तो सृष्टि रचता है। निराकार कैसे रचेगा? नहीं, जैसे कहा जाता है धनवान माने क्या? बहुत धन वाला। ऐसे ही कहा जाता है भगवान है बहुत भगवान वाला। इतनी भगें और किसी के पास नहीं होती। सामान्य रूप से जो बाप होता है, एक दो चार निजाम बादशाह होगा तो 500 भगों वाला होगा, बच्चे भी ज्यादा पैदा करेगा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन भगवान, भगवान तो बेहद का बाप है। तो बेहद का बाप है या नहीं? किस रूप में है? शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में तो वो शिव शंकर भोलेनाथ की पार्वतियां ढेर होंगी या दो चार होंगी? बेहद की पार्वतियां हैं, बेहद का परिवार है, और धर्म पिताओं का फिर भी हद का होगा या बेहद का 500-700 करोड़ का होगा? हद का होगा। तो बोला जरूर कहेंगे कि भगवान ही बेहद का रचयिता है, रचा जाता है बच्चों को है इंडिविजुअली। बाप क्या रचते हैं, बच्चे ही तो रचते हैं, तो बच्चों को रचा जाता है, कोई अपन को थोड़ा ही रचा जाता है। तो ये भी सवाल पूछ करके फिर किसको सिर्फ कहें कि हाँ वो तो बाप हुआ ना, वो बेहद का बाप है, सारी सृष्टि का रचयिता है, परंतु उसको रचने वाला कोई भी नहीं है। वो रचयिता है, उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? ये पाई पैसे की बात में ही जनरली समझाई देना चाहिए कि ये सृष्टि रचने वाला कौन है। कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं लेंगे। सृष्टि कौन रचता है? भगवान ही रचता है। वो तो कहेंगे ही गॉड फादर रचयिता है, फादर माने ही उनसे वर्षा मिलना चाहिए। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता होगा, और वो बेहद का रचयिता स्वर्ग की रचना करता है, उसने स्वर्ग को रचा था। क्यों? और जो इंडिविजुअली बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सुख की दुनिया नहीं रचते हैं? सभी बाप अपने बच्चों के लिए सुख की दुनिया ही रचते हैं। फिर वो इंडिविजुअली बाप और ये बेहद के भगवान बाप में क्या अंतर है? हाँ, वो हद के सुख की दुनिया रचते हैं, और ये बाप बेहद का बाप बेहद स्वर्ग की दुनिया रचता है। क्यों? वो ही क्यों रचता है? जो इंडिविजुअल बाप बाप होते हैं वो क्यों नहीं रचते स्वर्ग है? नहीं, हाँ, कि और जो दुनिया में बाप होते हैं चाहे दो चार बच्चों के बाप हो, चाहे 200-250 करोड़ बच्चों के बाप हो क्राइस्ट जैसे, वो फिर भी नरक रचते हैं। क्यों? क्योंकि वो नर अर्थात मनुष्य है, मनुष्य क्या रचना रचेगा? मनुष्य नरक की ही रचना रचेगा, और वो बेहद का बाप स्वर्ग की रचना किस आधार पर रचता है? क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो आकर के बच्चों को सिखलाते हैं, बच्चे स्वस्थिति में रहो, अर्थात आत्म की स्थिति में रहो। स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह, आत्म की स्थिति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति है। और पर क्या है? ये प्रकृति ही पर है। क्या है? प्रकृति पर है। परावलंबी न बनो, प्रकृति जीत बनना है, प्रकृति पति बनना है या प्रकृति के अधीन होकर के रहना है? प्रकृति जीत बनना बाप सिखाते हैं। तो जिन देवताओं ने प्रकृति को जीता, स्वर्ग में प्रकृति उनका दास ही बनकर के रहती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कोई भी हड़कंप नहीं मचा सकते। क्यों? क्योंकि उनको जीता हुआ है। तो वेद के बाप ने स्वर्ग को रचा था, ये कभी न कहें है? कहें या न कहें? अभी न कहें। क्या? वेद के बाप ने स्वर्ग को रचा था कलपूर्व में, अभी रचा है? अभी नहीं रचा। क्यों? क्योंकि जब तक स्वस्थिति सदा धारण करने वाला बाप, हम बच्चों को नंबरवार आप समान न बना दे, तब तक स्वर्ग की रचना नहीं हो सकती। तो अभी न कहें कि वो स्वर्ग का रचयिता है। क्या? अभी भी नरक की दुनिया है या कहीं दुनिया में कोई भी परिवार में स्वर्ग है? है? नहीं है, नरक है। बाप के घर में भी माया आती है। मधुवन में माया आती है या नहीं आती है? तो ये मधुवन, जो मधुसूदन बाप का घर है, उसमें भी माया इंटरफियर करती है। सारी दुनिया में माया और प्रकृति का राज्य है, बाप का राज्य तो नहीं है। तो कहेंगे फिर वही बाप आकर के स्वर्ग का रचयिता बनेगा, आकर के बनेगा, अभी आया हुआ नहीं है। है? हाँ, 64 की वाणी तो है, 64 में नहीं बनाया, चलो मान लिया, अभी बना दिया स्वर्ग। है? अभी भी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग बनाया, इसलिए बोला वो ही बाप आकर के फिर से स्वर्ग रचेगा। माना अभी आया नहीं है, आया है। सबकी बुद्धि में आ गया 100%? नहीं आया तो कैसे आ गया? नंबर बार आ गया। वाह, ऐसे दुनिया में कोई होता है जो कहे ये हमारा बाप आज है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा? ऐसे होता है? हैं? अरे बाप है तो बाप है, नहीं है तो नहीं है। बाप है, आ गया, फिर बुद्धि में से जाता तो नहीं है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं होते, माया हिलाती तो नहीं है, नया है लगता है, अभी सतो प्रधान स्टेज है। क्योंकि ज्ञान भी सतो रजो तमो में से गुजरता है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, ये जो ज्ञान लिया है ब्रह्मा के मुख से, ये भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। शूटिंग हो रही है तो जो नए नए आए हैं वो इतना पूरा नहीं समझते हैं कि वास्तव में बाप आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं आ गया बच्चा, ऐसे ही कहते हैं ना। और जब तक जन्म नहीं लिया है तब तक है? कोई नहीं कहता कि बच्चा ने जन्म लिया। क्या पता जन्म ले ले न ले पेट में ही मर जाए, या क्या पता बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, पक्का तो नहीं होता है। तो अभी गुप्त ज्ञान गर्भ में है या पैदा हो गया है, ये गुप्त बाप का पार्ट चल रहा है या प्रत्यक्ष है? कहेंगे अभी भी गुप्त है, इसलिए कहा वही बाप जिसने कल पहले स्वर्ग रचा था वही आकर के स्वर्ग रचेगा, अभी आया नहीं है। आएगा तो एक थक से स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी। और ये नरक खलास हो जाएगा। जिनके लिए स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी उनके लिए नरक खलास हो जाएगा। नरक खलास करने के लिए ये बड़ी भारी लड़ाई है। कौन सी? महावारी, महाभारत। महाभारत तीर कमान की लड़ाई है, काई की लड़ाई है, हैं? माया की लड़ाई है। अच्छा, अर्जुन ने रथ में बैठ करके माया की लड़ाई लड़ी थी, तीर कमान की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हैं? नहीं लड़ी थी, लड़ी थी तीर कमान की लड़ी थी या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लड़ाई लड़ी थी, हैं? तीर कमान की लड़ाई लड़ी थी, हैं? वो भक्ति में होता है, हम अभी की बात कर रहे हैं। ज्ञान के विकार होते हैं, हाँ, अज्ञान से जो विकारों की पैदाइश होती है, जो विकृति आती है, विपरीत कर्म होते हैं श्रीमत के बरखिलाफ। श्रीमत क्या कहती है, कौन सा कर्म करना चाहिए, है? नहीं, श्रीमत कहती है सुख दो सुख लो, कर्म इंद्रियों से कर्म करो कि नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन ऐसा कर्म करना है कि कोई को दुख ना होने पाए। अगर कर्म इंद्रियों से ऐसा कर्म किया कि दूसरा दुखी हो जाए तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? और पाप का फल है नरक में भोगना पड़ेगा। नरकवासी बनेंगे या स्वर्गवासी बनेंगे? नरकवासी बनेंगे। तो ये माया की बड़ी भारी लड़ाई है, और ये माया की लड़ाई सिखाने के लिए कौन आया हुआ है? बेहद का उस्ताद आया हुआ है। माया की लड़ाई में जीत ही जीत पानी है, हारना नहीं है, इसका नाम है लड़ाई का महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। सन्यासी जंगल में जाके माया पर जीत को पाने की कोशिश करते हैं या घर ग्रस्त में रह करके जीत पाने की कोशिश करते हैं? वो जंगल में चले जाते हैं। और भगवान बाप क्या कहते हैं? अरे जंगल में तो पत्नी ही नहीं होगी, क्या जंगल में कांटों के जंगल में दुखदाई ही मिलेंगे, सुखदाई नहीं मिलेंगे क्या? सन्यासियों की कर्म इंद्रियों पर विजय जंगल में नहीं हो सकती, कहाँ हो सकती है? घर गृहस्थ में हो करके रह करके विकारों पर जीत पा सकते हैं। और घर किसे कहा जाता है? ईंटों के मकान को घर कहा जाता है क्या? नहीं, ये बात सन्यासी लोग भी जानते हैं, शास्त्रकार भी जानते हैं, कहते भी हैं न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते ग्रहणी ग्रहम उच्यते, क्या घर को घर नहीं कहा जाता? कौन घर है? गृहिणी ग्रहम उच्यते, जो गृहिणी है वही घर है। ग्रहम हे गृहिणीहीनम अरण्य सदसम्मतम, घर है जो गृहिणी से रहित है, चाहे बाप की गृहिणी हो चाहे बच्चे की गृहिणी हो, लेकिन घर में गृहिणी जरूर हो। अगर घर में गृहिणी नहीं है घर को संभालने वाली, तो घर घर नहीं है, जंगल है, अरण्य है। तो इस लड़ाई का नाम क्या है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये बड़ी भारी लड़ाई है क्या? हाँ, और दुनिया में जो भी लड़ाइयां हुई है 2500 वर्ष में, वो तो छोटी छोटी लड़ाइयां हुई है, साल दो साल चार साल आठ साल लड़ाई चली होगी, घेरेबंदी चली होगी, और ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलती है। परंतु गीता में भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है क्या? महाभारत लड़ाई में वो लड़ाई कराने वाला नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये नाम देने से ये सिद्ध हो जाता है क्या? कृष्ण का नाम देने से क्या सिद्ध हो जाता है? है कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं ना, करते हैं, बड़े रूप की पूजा करते हैं या छोटे रूप की पूजा करते हैं? है बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जो बच्चा कृष्ण है वो विकारों का युद्ध करना क्या जानेगा? जानेगा है? नहीं जानेगा। इसे साबित होता है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं था, कृष्ण ने ये विकारों की लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया। किसने सिखाया? ये तो परमपिता परमात्मा शिव जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी भी गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं है, वो ही आकर के ये विकारों का युद्ध करना सिखाता है। ये शिव का नाम देने से सिद्ध हो जाता है कि महाभारत गृह युद्ध कराने वाला गुरु कौन था, है परमपिता परमात्मा शिव निका शिव ही था, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, शंकर की मूर्तियां मिलती है, इसे साबित होता है कि शंकर साकार में भी रहा परंतु निराकारी स्टेज में, जिसमें शिव प्रवेश होकर के शंकर को आप समान बनाते हैं, माना ये शंकर और विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली जो भी आत्मा है उनको भी देह बना सकता है। देह बना आएगा तभी तो पांच विकारों की उत्पत्ति होगी, तो इन पांच विकारों पर विजय परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के सिखाई। तो कृष्ण का नाम देने से ये महाभारत लड़ाई सिद्ध नहीं होती है। गीता में कौन सी लड़ाई बताई है?